प्रातः क्लास चल रहा था 31 मार्च 1963। पहले पेज के अंतिम लाइनों में बात चल रही थी कि ज्ञान यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकलेगी और फिर नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी पूरी होगी। तब ये यज्ञ समाप्त होगा। यज्ञ समाप्त होगा और जय जयकार हो जाएगी और स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। जितना जितना वो मनुष्य यज्ञ रचेंगे उतनी उतनी हाहाकार मचती जाएगी। इकतीस दिन 63 की वाणी का दूसरा पेज। ये सभी उनके अल्पकाल के यज्ञ हैं। परंतु ये तुम्हारा कितना बड़ा यज्ञ है। और उस यज्ञ में आहुति भी इतनी बड़ी पड़नी है। सारी दुनिया की आहुति पड़ेगी। तो ये है बेहद का ईश्वरीय यज्ञ और वो सभी है मनुष्यों की यज्ञ। ये यज्ञ गॉड फादर ने खुद रचा है ब्राह्मणों के द्वारा। वो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचते हैं। अभी तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। अभी ये प्रजापिता कहां से आया? प्रजापिता ब्रह्मा भी तो चाहिए ना। जिससे ब्राह्मणों की पैदाइश हो। जरूर सारी प्रजा का पिता है। 500-700 करोड़ मनुष्य प्रजा है। उनका पिता तो कलयुग अंत में ही होता है। तो सुप्रजा पिता को निमित्त बनाते हैं। तो देखो कितना बड़ा यज्ञ बाप ने रचा है। अभी जो ब्राह्मण यज्ञ रचते हैं वो सेठ को तो याद करेंगे ना। फलाने सेठ ने यज्ञ रचाया है। वो लोग तो मिट्टी का लिंग बनाए उसकी पूजा करते हैं। तो जड़ पार्थिव लिंग हो गया। वो यादगार है। इस संगम युग की भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल बातें ही पकड़ते हैं। चैतन्य को तो समझते ही नहीं। बाप कहते हैं ये तो है चैतन्य जीव आत्माओं का यज्ञ, अथवा तो शालिग्राम कहें, उनको बैठ पढ़ाते हैं। सब तो शालिग्राम नहीं है, यज्ञ रचते हैं तो ज्यादा में ज्यादा शालिग्राम कितनी संख्या के बनाते हैं? है 1,00,000 तो बनाते ही है, परंतु जास्ती में जास्ती 4,00,000 भी बनाते हैं। तो वो शालिग्राम इन कानों से सुनते हैं, परंतु ये बातें और कोई समझा नहीं सकता कि वो 4,50,000 या 1,00,000-2,00,000 ही क्यों बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इतने बड़े संसार से 4,50,000 मनुष्यात्माएं ही निकलती हैं, जो पक्की पक्की आत्मिक स्थिति को धारण करती हैं। आत्मा बनती हैं, जिनकी यादगार शालिग्राम वो भक्त लोग भलापन को शिव हम कहते हैं। परंतु वो कोई ज्ञान के सागर नहीं है, और मैं तो ज्ञान का सागर हूं। ब्रह्मा तन के द्वारा सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देता हूं। अपने साथ योग लगाना सिखाता हूं। वो साधु लोग तो अपना चित्र दे देते हैं और फिर अपने साथ योग लगवाते हैं। अभी बाप तो कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो, मैं निराकार हूं तो तुम बच्चे भी निराकारी स्टेज को धारण करने वाले हो, इसलिए मेरे बच्चे हो। तुम किसको कहा जाता है? तुम तो मेरे बच्चे हो, जो सन्मुख बैठने वाले हैं उनको ही तुम कहा जाता है। ऐसे तो सभी का मैं एक ही बाप हूं, बाकी तो सभी भाई बहन हैं, और तुम तो आपस में भाई भाई हो, आत्मा आत्मा भाई भाई। सन्यासी भी ऐसे कहेंगे, उनमें भी अब माइयां सन्यासिनी बनती हैं, तो वो भी भाई बहन ठहरे। बाकी वो क्या कहते हैं वो तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी यहां तो रचयिता एक ही बाप है। वो तो अनेक प्रकार के सन्यासी हैं और भांति भांति के उनके फॉलोअर्स हैं। उन फॉलोअर्स कोई वर्षा नहीं मिलता है, बाप से तो वर्षा मिलता है। कोई भी आए तो प्यार से समझाना है, बोलो तेरा बाप कौन है, जिसको सभी याद करते हैं। उनसे वर्षा लेने के लिए ही उनको याद किया जाता है। बाप कहा ही जाता है जिससे वर्षा मिले। वो बेहद का बाप है तो वर्षा भी जरूर बेहद का देते होंगे। परंतु भक्ति मार्ग में कोई उनसे पुत्र मांगते हैं, कोई हेल्थ मांगते हैं। अक्सर करके काली शीतला आदि देवियों के पास जाते हैं। जिनकी आंखें खराब होती हैं तो उन पर चांदी की आंख चढ़ाते हैं। घट डलवाते हैं, अब ये रिवाज रसम कहां से निकले। बाप कहते हैं इस समय तो सभी अंधे हैं, तुम देवियां उनको दिव्य चक्षु देती हो, अंधों की लाठी बनकर के सोझरा करती हो और शीतल बनाई देती हो। शीतल आंखें मिलने से ही उनको स्वर्ग का साक्षात्कार होता है। अभी तो सबकी आंखें तत्ते तवे के समान है, वो गरम तवे आंखों से जहन्नुम देखते हैं। तो बाबा आकर के इन शक्तियों को ज्ञान का कलश देते हैं। तो उनकी दोजख की आंखों को दिव्य दृष्टि मिल जाती है तो फिर बैकुंठ देखते हैं। इस समय के मनुष्य तो हैं ही अंधे की औलाद अंधे। न बाप को न बाप के वर्षे को न मुक्ति को न जीवन मुक्ति को न शांति धाम को न सुख धाम को देख और जान सकते हैं। पहले तो हम भी अंधे थे, बाप ने हमको भी आंखें दी हैं, अभी हम शीतल हो जाएंगे। जब हमारी विकारों की खाद निकल जाएगी तो हम शीतल दुनिया में चले जाएंगे। बातें सभी यहां की हैं, हर एक देवी की महिमा अलग अलग है। इस समय में शक्तियां बैठे तत्ते तवे को अथवा काम चिता में जलने वालों को शीतल बनाती है। اس سمے سانپ جل رہے ہیں، تو ان جلتے ہوئوں پر جان کی برسات چاہیے، اس برسات سے پتت سے پاون کالے سے گورے بن جاتے ہیں۔ بابا کی سمجھانی تو بہت اچھی ملتی ہے، پرنتو جب کوئی دھارن بھی تو کرے نا، جب باپ اتنی پوائنٹس دیتے ہیں تو پھر اپنی پوائنٹ نکال کر کے سنانے کی کیا درکار ہے؟ کوئی تو اپنی اچھا بھی سناتے ہیں، اور اچھی پوائنٹ بھی سناتے ہیں، کوئی پھر منمت پر رنگ بھی سناتے ہیں۔ تو باپ سمجھاتے ہیں یہ بروبار اویناشی گیان یگ ہے، اور اس گیان یگ میں آہوتی سب کی پڑے گی، گائن بھی ہے، رام گیو راون گیو، اس یگ میں تو سبھی شریروں کی آہوتی پڑنی ہے، آتما تو اویناشی ہے، ان آتماؤں سے کھاد نکل جاوے گی، کھاد نکل جاوے گی تو آتمائیں گرو جیل میں تو نہیں جا کر کے بھاگیں گی، کیونکہ سورگ میں تو گرو جیل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ گرو تو ایسے ہے جیسے بہشت، کلیگ میں آتما گرو میں شریر لے کر کے انیک پرکار کے ساکشاتکار دوارا سجائیں بھوگتی ہے، کیوں؟ کیونکہ 63 جنموں میں انیک جنموں کے پاپ کرم اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو گرو جیل میں جانے سے ہلکے ہوتے رہتے ہیں، تراہی تراہی کرتی رہتی ہے آتما، اور یہ تو سب بابا نے ساکشاتکار بھی کرائے ہیں، کیونکہ پرم پتا پرماتما خود دھرم راج کا روپ دھارن کر کے سجائیں دیتے ہیں، پرنتو ایسی نہیں ہے کہ پرم پتا پرماتما ساری سرشٹی کے روپ دھارن کرتے ہیں، اکتیس تین 63 کی وانی کا تیسرا پیج، جیسے بابا بھکتی مارگ میں ساکشات کراتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ آتما کہیں چلی جاتی ہے، واستو میں ڈراما میں یہ ساکشاتکار کی نود ہے، تو وہ ڈراما انوسار ساکشاتکار ہوتے رہتے ہیں، تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ پرم پتا پرماتما نے ساکشاتکار کرایا، हम तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनको साक्षात्कार हुआ, परंतु इन साक्षात्कार आदि से कुछ भी फायदा नहीं होता। सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है कि अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो अच्छे बनेंगे, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा का और कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ, प्रिंस का साक्षात्कार हो अथवा युगल विष्णु का हो, बात तो एक ही है। फिर समझाने की भी बात है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, परंतु फिर भी पुरुषार्थ करना है। इन भक्ति मार्ग के साक्षात्कारों की तो कोई वैल्यू नहीं है, किंतु वहां तो इनके अर्थों को भी नहीं जानते हैं। अभी हम तो जानते हैं कि ये पुरुषार्थ करने से ऐसा पद पाया है, भक्ति माल में भी तीव्र भक्तों की माला बनती है, साधारण भक्तों की माला नहीं बनती है। ये तो है रुद्रमाल, पूज्य की माल है। और ये रुद्रमाला ट्रांसफर होती है, कहे में है, रुद्रमाला विजयमाला में ट्रांसफर होती है, भक्तमाला कोई ट्रांसफर थोड़ा ही होती है। तो हमारी तीन मालाएं बनती हैं, वो मनुष्य तो जब मोतियों की भी माला बनाते हैं तो बीच बीच में बड़े बड़े दाने होते हैं, फिर वो दाने एक एक करके छोटे होते जाते हैं। क्या मतलब हुआ है? हाँ, माला बनाते हैं तो पहले से ढेरियां तैयार कर ली जाती हैं। उन ढेरियों में भी बड़े दाने अलग, छोटे दाने अलग, नंबरवार ढेरियों में से पहले बड़े दानों को फिर छोटे दानों को डालते हैं। तो देखो, उन मोतियों की माला में भी दाना डाल करके देखते हैं कि एक दो से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो यहां भी संस्कारों का मेल देखा जाता है, कितने एक दूसरे के नजदीक हैं। देखते हैं कि फिट बैठता है या नहीं बैठता है। अगर फिट नहीं बैठता है तो फिर बदल ही कर देते हैं। तो एक दो से मैच करना पड़ता है। बाबा तो जवाहरी है तो इन बातों का अनुभव है। तो यहाँ ज्ञान मार्ग में भी ऐसे ही माला बनती है। बनती रहेगी और बनती रहती है। पहले तो ब्रह्मा की साकारी माला है, वो माला भी बदलती रहती है। बाकी रुद्र की माला और विष्णु की माला तो एक्यूरेट होती है। बदली सदली की बात नहीं, तो ये तीन प्रकार की मालाएं यहां बनती हैं। कौन कौन सी है? अरे सुनते सुनते भूल गए, रुद्रमाला, विष्णु की माला और भक्तमाला। बाप के भक्त भी होते हैं, ऐसे तो वो भक्तमाला पुजारी भक्तों की होती है, वो बाप के बच्चों की नहीं होती है। वो आधार मूर्त ही विश्वमाला के मन के बनते हैं। तो वो पुजारी भक्तों की माला कभी पूजी नहीं जाती है। क्योंकि भक्त पवित्र बनने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए सिर्फ नाम है उनका शास्त्रों में। पूजी तो ये जाती है, क्योंकि पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। अभी सभी सेंटर्स के बच्चे आगे खड़े हैं, मुरली तो सभी सुनेंगे। कोई कागज की मुरली से सुनते हैं, कोई टैप रिकॉर्ड से सुनते हैं, बाकी सन्मुख सुनने का तो मजा ही बहुत अच्छा आता है। परंतु सदैव सन्मुख सुनने का तो कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि सदैव तो कोई साथ रह ही नहीं सकता। इतना सदैव साथ तो कोई भी रह नहीं सके। ये बातें समझाने वाले बड़े अच्छे तीखे चाहिए। तो झट कोई को तीर लग जाए। क्योंकि पहली पहली बात है बाप का परिचय देना। पहले पूछना चाहिए, तुम किसकी भक्ति करते हो? भगवान किसको कहा जाता है? फिर बताओ कि भगवान को परम प्रिय परम पिता तो सभी कहते हैं, क्यों कहते हैं? जरूर ऐसा कोई टाइम आता है जिसमें सारी दुनिया अनुभव करती है कि बाप हमको जितना अंत तक प्यार देता है उतना प्यार कोई नहीं दे सकता, सब धोखेबाजी करते हैं। वो परम पिता भी है, उससे बड़ा वर्षा कोई दे ही नहीं सकता, और वो परमधाम में रहने वाला है अर्थात परे की परी स्टेज में रहने वाला है। ऐसे ऐसे समझानी देने से दो बाप को तो खुशी खुशी से मानेंगे, फिर पूछना है कि बताओ बड़ा फादर कौन है? छोटे फादर को तो सभी जानते हैं, कुत्ते बिल्ले भी जानते हैं, बड़े बाप को तो मनुष्य ही जान सकते हैं। अब बताओ छोटा बाप कौन है और बड़ा बाप कौन है? 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 वेद के दो बाप हैं, एक है मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा है आत्माओं का बाप। तो बड़ा बाप कौन हुआ? आत्माओं का बाप बड़ा बाप है। बड़े बाप को तो सब मानेंगे जानेंगे, जान सकते हैं, परंतु बड़े बाप को कुत्ते बिल्ले तो नहीं जानेंगे। कुत्ते बिल्ले? अच्छा, छोटे बाप को कुत्ते बिल्ले जानेंगे? कैसे? मनुष्य सृष्टि में कुत्ते बिल्ले जैसे कर्म करने वाली भी आत्माएं हैं, इसलिए वो छोटे बाप को तो जानेंगी। एडम को मानेंगी और एडम को तो सब धर्म वाले मानते हैं। बड़े बाप को तो मनन चिंतनशील मनुष्य ही जान सकते हैं। मंथन नहीं चलता है तो बड़े बाप को कैसे जानेंगे? तो समझाना चाहिए कि जिस बाप ने तुमको इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भेजा है उनको तुम कैसे भूल सकते हो, और वो बाप तुमको कोई नरक में नहीं भेजते हैं, वो वेद का बाप इस सृष्टि पर स्वर्ग की रचना आए करते हैं और तुमको स्वर्ग में भेजते हैं। वो एक ही बाप है जो स्वर्ग का क्रिएटर है। क्यों? क्योंकि एक ही है जो सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला है। उसे बेहद के बाप को क्यों भूल गए हो? अभी हम आपको रास्ता बताते हैं। तो अभी बीती सो बीती देखो, अभी उस बाप को याद करो जो स्वर्ग की रचना कर रहे हैं। लौकिक बाप को याद करते करते पारलौकिक बाप को भूल गए हो। अभी बाप ने तुमको समझाया है कि कैसे कैसे किसको समझाओ। सन्यासी तो कह नहीं सकते कि तेरे दो बाप हैं, वो तो अपन को ही बाप कह देते हैं। शिवो हम कह के बैठ जाते हैं। तुम समझाते हो कि जिस बाप को तुम भूले हो वो बाप बेहद का वर्षा तुम बच्चों को देने आए हैं। वो बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा ही देंगे। और कोई इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा नहीं दे सकते। वो खुद ही सृष्टि पर आते हैं तो और ही नीचे गिरते जाते हैं। स्वर्ग का वर्षा कहां से देंगे? और ये तो है पारलौकिक बाप। अभी वो पारलौकिक बाप आए हैं और कहते हैं मुझे याद करो। पारलोक से आए हैं तो आने वाला निराकार है या साकार है? है? क्या है? निराकार है। परंतु वो निराकार कहते हैं। कहते कैसे हैं? जरूर कोई मुकर्रर साकार रथ है। वो सर्वव्यापी नहीं है। एक व्यापी होकर कहते हैं कि मुझे याद करो। तो ये याद बुद्धि में ठहर जाती है। सर्वव्यापी की याद तो कोई की बुद्धि में ठहरती ही नहीं। और ही बेताली बन जाते हैं। अगर कोई को याद नहीं रहती है तो बताए नहीं सकते, न वो खुशी रह सकती है। क्योंकि बहुत बहुत विकर्म भी होते रहते हैं। श्रीमत के विपरीत कर्मों को ही विकर्म कहा जाता है। उनका फिर 100 गुना पाप चढ़ता है। तो फिर याद कैसे ठहरेगी? याद नहीं ठहरेगी तो खुशी भी नहीं ठहरेगी। अगर बाप को याद करते रहेंगे तो तुमसे विकर्म भी नहीं होंगे تو پکا کرنا ہے، ایک تو وہ باپ ہے اور دوسرا پہلے تو کیا ہے، پہلے وہ پیار کا ساگر باپ ہے، پھر دوسرا دھرم راج بھی ہے، اس لیے پھر دیوی کل میں بدنامی بھی ہوتی ہے۔ کہ باپ کا بچہ بن کر کے ایسے ایسے کام کیے، جیسے دنیا میں بھی کوئی جیل میں جاتے ہیں، پاپ کرم کرتے ہیں تو بدنامی ہوتی ہے نا، پھر ان کا چہرہ ہی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اور یہاں سنگم یگ میں جو بدنامی لگتی ہے وہ تو جنم جنمانتر کلپ کلپانتر کے لیے کالا داغ لگائی دیتی ہے۔ اس لیے ایسی سیمت کی برخلافی والی بھولے نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، بچوں کو گڈ مارننگ۔